गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत अच्छा है, बाहर पानी की वर्षा हो रही है और यहाँ पर हम ज्ञान वर्षा का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं और इस वर्षा को बरसाने के लिए हमारे सामने, हमारे सम्मुख आदरणीय गीता दीदी जी पहुंचे हैं। हम एक हाथ से वेव करके आपका वेलकम करेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी, जो स्वयं ज्ञान के सागर की गहराई में जाकर ज्ञान के हीरे रत्न और मोती लेकर आते हैं, स्वयं में धारण किया और वही हम सबके सामने आज शेयर करेंगे। आदरणीय दीदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, बहुत ही मेधावी छात्रा रहे हैं अपने पढ़ाई के समय में। गुजरात बोर्ड में आपने मैट्रिक में टॉप किया था। एक बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं। आपने अपने जीवन में ज्ञान का प्रारंभ अपने बहुत ही छोटे बाल्यकाल से, मात्र 14 वर्ष की आयु से 1969 में आरंभ किया। अपने माता पिता के साथ आप इस ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आए और अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में पूर्ण रूप से समर्पित किया 1972 में। आप गुजरात के बहुत सारे सेवा केंद्रों पर सेवाएं देते रहे, बहुत सारे सेवा केंद्रों का कुशल संचालन करते रहे और सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने। 1993 में आप यहां माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में सेवारत हुए। तीन मुख्य कैंपस जो माउंट आबू के हैं, उनमें से एक है ज्ञान सरोवर, जहां पर आपने अपनी अथक सेवाएं दी। हमारे एक आदरणीय दादी जी मनोहर दादी जी थे, जो उस समय 93 के लगभग अराउंड वहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के रूप से, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपनी सेवाएं दी। आप उनके साथ अथक रूप से वहां का इंटरनल सारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते रहे और वर्तमान समय आप शांतिवन परिसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप राजयोग शिविर की शुरुआत के निमित्त बने। पहला गुजराती का जो राजयोग शिविर था वो आप ही के द्वारा शुरू किया गया, आप ही ने वो कराया। यहां पर भी जितने भी राजयोग शिविर होते हैं वो आप ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो अलग अलग 20 विंग्स बने हुए हैं, उनमें से एक बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है जिसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत अच्छे वक्ता होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे लेखिका भी हैं। आपके लेख पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में भी छपते हैं। यहां इस परिसर में जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वर्कशॉप, सेमिनार्स, डायलॉग्स आदि होते हैं, उनमें आपका पूर्ण योगदान रहता है। तो ऐसी महान विभूति आज हमारे सम्मुख है। आज हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसे हम अपना संबंध परमात्मा से जोड़ें। वैसे तो कभी भी किसी को ये सिखाया नहीं जाता कि अपने माता पिता को याद कैसे किया जाता है, लेकिन वो हमारा परम पिता, हमारी परम माँ, उससे कनेक्ट हम कैसे हो, वो कला जो आपने स्वयं सीखी, स्वयं जीवन में धारण की, वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। भक्ति में अनेक साधनों को लेकर, अनेक क्रियाएं करके, जन्म जन्मांतर से हम ये प्रयास करते रहे हैं कि हमारे मन बुद्धि परमात्मा की याद में एकाग्र हो। पर बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं होता है, मन भटक जाता है। परंतु सहज राजयोग जो स्वयं परमात्मा आकर हम आत्माओं को सिखाते हैं, उसमें किस विधि हम अपने मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ते हैं। कल आप सभी ने योग से संबंधित दो मूल सत्यों को समझ लिया है कि हम स्वयं कौन हैं और परमात्मा कौन है। अगर कल ये दो लेसन हुए ना आपके हुए, अगर ये दोनों लेसन ध्यान से अटेंड किए हैं तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि अब तक हमारा मन क्यों भटकता रहा। प्रथम लेसन में आपने स्वयं का सही परिचय प्राप्त किया, इससे एक कारण स्पष्ट हुआ कि जब हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आ जाते हैं, उस देहाभिमान के कारण ही मन भटकता है। हम कह सकते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, हम ऑटोमेटिक देह से रिलेटेड व्यक्ति वस्तु प्रवृत्ति बातों से अटैच हो जाते हैं। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास आत्मचिंतन आपको बताया गया कि प्रथम हम सोल कॉन्शियस बने, फिर हम गॉड कॉन्शियस बन सकेंगे। और दूसरे लेसन में उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा के बारे में सही परिचय आपने प्राप्त किया। मन भटकने का दूसरा कारण कि जिस परमात्मा से हम योग लगाना चाहते हैं, मिलन मनाना चाहते हैं, हम उस परमात्मा को ही नहीं जानते। बेशक हम परमात्मा को मानते हैं, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। इसलिए हरेक ने अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार अपने अपने इष्ट में बुद्धि लगाने लगी। अब परमात्मा का सत्य परिचय आपको प्राप्त है कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, कल्याणकारी शिव पिता है जो सर्वगुण सर्व शक्तियों के सागर है, हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। अब आप समझ सकते हैं कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है। शरीर भौतिक है, तत्वों से बना है। हम शक्ति हैं, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से मिलन, कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। परमात्मा से मिलन कोई फिजिकल मीटिंग की बात नहीं है, ये मनोमिलन की बात है, स्नेह मिलन की बात है। जैसे एक वक्ता और श्रोता के बीच संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से होती है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे मिलते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से संपर्क मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता, केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयिम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब अपने आप को देखिए, हम अपने मन बुद्धि कहीं और अटैच करके बैठे हैं और परमात्मा मिलन के लिए फिर हम बाह्य मेहनत करते रहते हैं। अनेक साधन सामग्री का ढेर लग जाता है, अनेक क्रियाएं क्रियाकांड करते हैं और रिजल्ट तो यही है कि मन भटकता रहे। तो राजयोग में न क्रियाएं हैं न कोई साधन की आवश्यकता है। राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। अक्सर योग के नाम पर हम आसन प्राणायाम की व्यायाम की शारीरिक क्रियाएं करते रहते हैं। यथार्थ योग किसको कहते हैं हमें पता ही नहीं। हम योग के नाम पर शारीरिक क्रियाएं करते हैं। वो फिजिकल योग है, फिजिकल हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। भले आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए है। पर जहां तक मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ने की बात है, स्वयं को प्यूरिफाई और एम्पावर करने की बात है, हमें कोई शारीरिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन है, माताएं बहनें बूढ़े बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहां आप बिगर आसन आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय आप और ही बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि कब घंटा पूरा हो और ये आसन छूटे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। हमारे शरीर भी ऐसे कमजोर रोगी हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि फिजिकली जब भी आप योग अभ्यास करने बैठे, परमात्मा को याद करने बैठे, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठे। कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए, फिजिकली रिलैक्स पर मेंटली अटेंटिव होकर बैठिए। लक्ष्य पूर्वक बैठिए कि ये घंटा आधा घंटा दो घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठा हूँ, प्रभु चिंतन के लिए बैठा हूँ। अगर मन से अटेंटिव होकर नहीं बैठेंगे और फिजिकली रिलैक्स होकर बैठेंगे, आप सो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है कि अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। ये समय स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन के लिए है। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है, इस अटेंशन से बैठे। आजकल फिजिकल योग लोग सीख रहे हैं, हो सकता है आप में से भी कई पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर घंटा शरीर से स्थिर बैठ भी सकते होंगे। पर आप सोचिए कि आप शरीर से स्थिर बैठ गए, मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में स्थित नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर बैठ गए, तो क्या फायदा है। हमें मन मगन करना है, हमें बुद्धि परमात्मा स्मृति में एकाग्र करनी है, न कि शरीर को केवल स्थिर करना है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को यही कहते हैं कि आज का कलियुगी संसार ही कांटों का जंगल है, आपका शरीर ही विचित्र गुफा है, और मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही, अब और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ने की, उनके मनन चिंतन में रहने। तो पहली बात, राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। अक्सर भाई बहने सोचते हैं कि हमें योग में क्या करना है, भक्ति में तो हम माला फेरते हैं, मंत्र रटते हैं, मुख से आरती भजन गाते हैं और मन लगाने का प्रयास करते हैं, राजयोग में क्या करना है। तो भाइयों और बहनों, राजयोग में न रटना है, न जपना है, न ही मुख से कुछ गाना बजाना आवाज करना है। राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं, रटना जपना नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते हैं, महेश भाई महेश भाई महेश भाई, हम ऐसे रटते हैं नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं। हम उनके बारे में चिंतन करते हैं। परमात्मा की याद के लिए भी हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति में हमारे विभिन्न प्रयास थे। समय प्रति समय जो धर्मात्मा महात्मा हुए उन्होंने सजेस्ट किए कि भाई इस प्रकार करके देखिए मन लगता है, पर अपने रिजल्ट को भी तो ऑब्जर्व करिए ना। माला फेरते रहते हैं और मन भी फिरता रहता है, क्योंकि रटना नेचुरल नहीं है। और जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो भटकना शुरू कर देता है। इसलिए वन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हुए हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। देखिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, हाथ के मन के छोड़ दे मन का फेर। ये हाथ से माला के मन के फेरने की बात नहीं है, मन रूपी मणके को फेरना है। मनोस्थिति बदल दी है, खुद को देह समझने के कारण मन बॉडी कॉन्शियस बन गया है, मन बहिर्मुखी बन गया है, मन संसाराभिमुख हो गया है। इसलिए देखिए ना वही विचार बार बार आते, क्योंकि हम वही कॉन्शियस हो गए। हमें मनोस्थिति चेंज करनी है, मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्माभिमुख करना है। ये कॉन्शियसनेस चेंज करने की बात है। इसलिए राजयोग में न माला फेरनी है ना कोई मंत्र जपना है। भक्ति में हम कोई ना कोई मंत्र लेते हैं गुरुओं से, शास्त्रों से, और फिर वो मंत्र रटते रहते। कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति मंत्र रटता है, अर्थ भी नहीं समझता है। कई धार्मिक प्रसंगों में, अनुष्ठानों में, मुहूर्त में, उद्घाटनों में हम ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुजारियों को बुलाते हैं, वो मंत्रोच्चार करते हैं, श्लोक बोलते हैं। बताइए कितने लोग समझते, कितने लोग अर्थ समझते। जब अर्थ नहीं समझते हैं हम अभ्यास क्या करेंगे, अनुभव क्या करेंगे। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र जपना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है। सिंपल बात है, हमें उसके अर्थ को समझकर धारण करना है, न कि वो रिपीट करते रहना है। ऐसा नहीं है योग में कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना नहीं है। ये कोई ओम शांति सिर्फ बोलने की कोई प्रथा की बात नहीं। ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। हमें ओम शांति बनना है। ओम शांति मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप। हमें अपनी शांत आत्मा स्थिति बनानी है, न कि सिर्फ शब्द रटना है। भक्ति में हम रटते हैं, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, बहुत भावना से हम शिव को नमन करते हैं, पर फिर सारा दिन क्या हम उस शिव परमात्मा की आज्ञा पर चलते हैं? हमें याद भी नहीं रहता है कि वो परमात्मा शिव हमें क्या सिखाते हैं। आपके बच्चे रोज सुबह उठकर आपको पांव लगते हैं, नमन करते हैं, पर फिर सारा दिन आपकी एक भी बात मानते नहीं हैं। आप बच्चों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि भाई ये बाह्याचार करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूं वो तुम करो, मेरी बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो। हमारा परमात्मा से अगर सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, समर्पण है, तो बार बार ओम नमो शिवाय कहने की या हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें उस शिव परमात्मा की आज्ञा पर चलना है, हमें उनकी ज्ञान गुण श्रीमत को मानने की स्वीकार करने की आवश्यकता। हम मन वचन कर्म से तन मन धन से उनके कार्य में मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा समर्पण है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है। सर्वोत्तम तो ये है कि जो परमात्मा के प्रेम मंत्र में मुग्ध हैं, उनको शब्द मंत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही इस योग अभ्यास में हमें मुख से कुछ भी आवाज नहीं करना है। भक्ति में हम बहुत आवाज करते हैं। आप देखते हैं हर बार त्योहार पर, चातुर्मास में, सावन मास में, लोग दिन रात माइक लगाकर भजन गाते हैं, कितना आवाज करते हैं, कितना आवाज करते हैं। जबकि सत्य ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। आरती शब्द वास्तव में आर्त वाणी है, अंतर की वाणी से याद करना है। हम अंतर्मुखी नहीं बन पाए इसलिए मुख से आवाज करने लगे। राजयोग में कोई आवाज नहीं करना, हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन बहुत प्यार से उस पिता को याद करना है, हमें उनसे बातचीत करनी है, हमें उनके ज्ञान गुणों का मनन चिंतन करना है। तो दूसरी बात, राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं है। तीसरी बात, लोग सोचते हैं हमें योग कहां लगाना है। भक्ति में तो हम सामने मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो रखते हैं, हम वहां मन एकाग्र करते हैं। राजयोग में हमें क्या करना है? अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब आप सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं हैं, अब आप ज्ञानी तो आत्माएं हैं। कल आपने स्वयं का सही परिचय प्राप्त किया है, उस परम पिता परमात्मा का सही परिचय प्राप्त किया है, अब आप विवेक से बताइए हमें योग कहां लगाना है, कहां लगाना है? हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से, मूर्ति से, फोटो से योग नहीं लगाना। चलो भक्ति में हमें परमात्मा का सही परिचय नहीं था, तो हरेक ने अपनी अपनी श्रद्धा भावना अनुसार अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो रख दी। अब हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है, हमें डायरेक्ट परमात्मा से योग लगाना है। भावना की सिर्फ बात नहीं, सत्य समझ की बात है। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल है, आपके कमरों में भी शायद लगा है वो जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल है, वो समझाने के लिए। परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये समझाने के लिए है। हमें उस प्रतीक से योग नहीं लगाना, हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। योग की सिंपल व्याख्या क्या है? परमात्मा जो है, जैसे हैं, जहां रहते हैं वहां मन बुद्धि लगाना, उसको योग कहते हैं। वो जो है सारी महिमा आप जानते हैं, वो हम आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, ज्ञान के सागर है, प्यार के सागर है, सदा पावन है। वो जो है और जैसे हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप, और जहां रहते हैं, कहां रहते हैं, परम धाम में मन बुद्धि लगाना, उसको योग कहते हैं। अपनी अपनी भावना, श्रद्धा, मान्यता अनुसार परमात्मा को याद करना, उसको भक्ति कहते हैं। वो भावना की बातें हैं, मान्यता की बातें हैं, सत्य नहीं है। और परमात्मा है ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। इन चर्म चक्षुओं से देखने की बात ही नहीं है। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है, वो जानना है, समझना है। अभी इस हॉल में आप बैठे हैं, अभी इस हॉल में आप सूर्य को नहीं देख रहे, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, क्या किया? मन की आंख से विजुअलाइज किया ना, क्योंकि बुद्धि में सूर्य के बारे में ज्ञान है, तो आपने मन की आंख से देखा। अब परमात्मा का सही ज्ञान है, अब मन की आंख से परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखना है, और बुद्धि से समझ पूर्वक याद करना, मनन चिंतन करना, और उस स्मृति में मग्न होना, उसे योग कहते हैं। इसमें कोई मेहनत की बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। हर कोई योगी बन सकते हैं। अक्सर जब भी हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश सभी भाई बहनों को देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो लोग सोचने लग जाते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं? हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, जिम्मेवारियां हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? वो समझ गलत है कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, घर संसार से दूर कहीं शांत एकांत में जाएं तो योग लग सकता है, और भक्ति में हुआ भी ऐसा कि अधिकतर जो योगी हुए तपस्या तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए। तो लोग सोचते हैं कि हम योगी कैसे हो सकते हैं। पर भाइयों और बहनों, देखिए राजयोग क्या सिखाता है। राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें संबंध, परिवार, प्रवृत्ति, जिम्मेवारियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। देह भान मिटाने की आवश्यकता है। बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। हमें देह भान को छोड़ना है और उसके लिए सिंपल अभ्यास, खुद को आत्मा समझने की आवश्यकता है। इसलिए राजयोगी बनने के लिए कोई बाह्याचार करने की आवश्यकता नहीं, ना ड्रेस बदलना है, ना स्थान बदलना है। स्थान नहीं, स्थिति बदलनी है। कई बार स्थान शांत है, एकांत का है और मन अनेकांत में घूम रहा है। स्थान नहीं बदलना है, हम जहां रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जो करते हैं वही हमें करना है। हमें अपनी मनोस्थिति चेंज करनी है। मैं शांत स्थिति में हूं तो मुझे अपार भीड़ में भी शांति। कई मेहमान हमें कई बार कहते हैं, मन करता है हम भी यहाँ रह जाएं। हम कहते हैं यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान और योग को साथ ले जाने की जरूरत है। ना ही इसमें कोई ड्रेस बदलना है, कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से हम तपस्वी नहीं हो जाते। कोई सफेद कपड़े पहन लेने से हम योगी नहीं हो जाते। ड्रेस नहीं, आंतरिक स्मृति, वृत्ति, स्थिति बदलना है। ये सफेद ड्रेस सिंपली इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर संस्था विद्यालय का अपना यूनिफॉर्म होता है ना? ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में समर्पित है, इसलिए हम फुल टाइम पहनते। बेशक योगी आत्मा को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। इसलिए न माथा मुंडाना है न जटा बढ़ानी है, ये बाह्य परिवेश की बात नहीं है। हमें अपनी आंतरिक वृत्ति, दृष्टि, स्मृति बदलने की बात है। हर कोई योगी बन सकते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। सिर्फ पूजा पाठ, धूप दीप, भजन कीर्तन करके खुश हो जाना नहीं है हम धार्मिक है। अक्सर लोग नियम से सुबह शाम पूजा पाठ, धूप दीप, भजन कीर्तन करते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक हैं, पर आचरण में कोई सुधार नहीं। राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। हमें सिर्फ पूजन, नमन, वंदन, गायन, दर्शन, अर्चन, कीर्तन करके खुश नहीं होना है। राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य बनना, हमें स्वयं महान बनना, हमें पतित से पावन बनना। परमात्मा को याद करने में भी देखिए, कोई परमात्मा को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं माइक लगाकर, कितना आवाज करते हैं, अल्लाह अकबर, ओ गॉड, हे भगवान, चिल्लाना नहीं है, पुकारना नहीं है। मुख का आवाज उनको नहीं पहुंचता है। कई कहते हैं हम परमात्मा को रोज याद करते हैं, पर वास्तव में वो क्या करते रहते हैं? परमात्मा से मांगते रहते हैं, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम भगवान से मांगते रहते, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम याद नहीं करते थे, तुम तो फरियाद ही करते रहते थे। राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं हैं। क्यों नहीं मांगना है? क्यों नहीं मांगना? हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो उनके वारिस हैं। परमात्मा से प्राप्त करना हमारा बर्थ राइट है। हमें मांगना नहीं है, हमें लायक बच्चा बनना है। लायक बच्चे को माँ बाप अपने आप देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? हमें योग्य बनना है। परमात्मा के लिए तो कहते हैं त्वमेव माता शपिता त्वमेव। क्या अपने आप को परमात्मा का बच्चा कहलाने लायक हम हैं? स्वदर्शन कर लीजिए, हमें योग्य बनना है। यहां योगी बनना माना योग्य बनना, सिंपल बात है। भगवान के बच्चे कहलाने लायक बनना, तो उनकी याद से ही प्राप्ति है। संकल्प से ही सिद्धि है, स्मृति से ही समर्थि आ जाती, मांगने की जरूरत ही नहीं। और तीसरा, हमें परमात्मा को प्रार्थना करने की, विनती करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर लोग बड़े दुखी होकर, लाचार मजबूर होकर ईश्वर को विनती करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं। परमात्मा तो है ही दाता, वो दे ही रहा है, हम ही महिमा गाते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वो है ही दाता, वो निरंतर दे ही रहा है। रिक्वेस्ट तो वहां करे ना जहां ना देते हो। मैं आपसे कोई चीज मांगू और आप ना दे तो मैं रिक्वेस्ट कर, प्लीज दीजिए। पर जो दे ही रहा है उनको बार बार कहने की, रिक्वेस्ट करने की क्या आवश्यकता? और ये इंसल्ट करना है कि भाई दे ही रहे हैं ना, फिर क्यों कहते हो दो 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 प्लीज। हमें सूर्य को कहना नहीं पड़ता है प्रकाश दो, वो है ही एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट माइट, वो ऑलरेडी दे ही रहा है। हमें उनके सन्मुख होने की जरूरत है, हमें अपने खिड़की दरवाजे खोलने की जरूरत है, पर्दे हटाने की जरूरत। परमात्मा सदा दाता है, और हर कोई जानते हैं परमात्मा देता है तो कैसा देता है, कैसा देता है देखो, जानते हो ना? जानते हैं कि वो तो अनलिमिटेड देता है। हमें सोचने की जरूरत है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो तो दाता है, दे ही रहा है, बेहद दे रहा, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति निरंतर दे रहा है, पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? अपने आप में खोजिए। यही कारण है हमारा उनसे योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा उनसे कनेक्शन ही नहीं। हमने अपने मन बुद्धि तो कहीं और जोड़ दिए हैं, देह में फंसे हैं, संबंधों में फंसे हैं, व्यसनों में, पैसे में, बातों में, हम तो वहीं अटैच हो गए। हम परमात्मा से कहाँ अटैच है, इसलिए फिर मांगते रहते। भाई आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करेंगे। परमात्मा पावर हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है। मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़नी, उसको योग कहते। खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उसको योग कहते। कनेक्ट होंगे तो रिचार्ज होंगे। योग मीन्स रिलेशन। बिना संबंध प्राप्ति का अधिकार नहीं मिलता है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है तो मुझे कुछ मिलेगा? मिलेगा नहीं। संबंध से प्राप्ति होती है। बच्चा पैदा हुआ और करोड़ों की मिलकत का वारिसदार बन गया, क्या किया? रिलेशन से अधिकार मिला। योग मीन्स परमात्मा से संबंध जोड़ना और निभाना, उसको योग कहते। अपने आप उसकी याद आती है। हमें अक्सर कौन याद आते? दुनिया में लाखों लोग हैं, हमें कौन याद आते हैं? जिससे हम रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। परमात्मा से संबंध जोड़ो, सिर्फ मानो नहीं, जानो, पहचानो, संबंध जोड़ो और निभाओ, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। भक्ति में हम संबंधों का सिर्फ वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? कौन सा श्लोक बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। हम रोज गाते हैं, गाने की जरूरत नहीं, निभाने की, फॉलो करने की जरूरत। क्या आपके बच्चे रोज घर में आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे दादा हो, ऐसे गाते हैं क्या? बच्चे को परख है यही मेरे माँ बाप है, बच्चे को निश्चय है यही मेरे माता पिता है। हमें परख हो निश्चय हो, परमात्मा ही हम आत्माओं के असली माँ बाप है। ये तो शरीर के माता पिता भाई बहन है ना, ये एक जन्म के है। ये शरीर छूटेगा ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा, नया शरीर लेंगे नए माँ बाप मिले। ये देह के माता पिता संबंधी है, हम आत्माओं के असली माता पिता परमात्मा है। हमें निश्चय चाहिए, जब जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक हर बात में, हर परिस्थिति में, हर समय मुझे कौन याद आएगा, वही याद आएगा ना, क्योंकि वही मेरा सब कुछ है। इसलिए सिंपल विधि है, परमात्मा की याद सहज आती रहे, उसकी मेथड है भगवान से संबंध जोड़िए, उनको अपना बनाइए। और तीसरी बात, जीवन में संबंध अनेक हैं, पर अनेक अनेक मित्र संबंधियों में हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती है, किसकी याद आती है? मित्र संबंधी तो बहुत है, पर हमें जिगरी बहुत याद किसकी आती? जिससे दिल का सच्चा प्यार है वो हमें बहुत याद आते हैं। योग का आधार प्यार है, जितना परमात्मा से प्यार उतनी एकाग्रता। बाहर जोर से बारिश हो रही है, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा है, भरेगा? हाँ, बस समझ गए ना, प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? हाँ, परमात्मा तो निरंतर बरस रहा है, पर हमें प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? बुद्धि ही विपरीत हो गई, परमात्मा से प्रीत नहीं रही, इसलिए प्राप्ति नहीं। चेक करिए अपने आप को, परमात्मा को याद करते हैं कैसे याद करते, अपने आप को देखिए। कहीं सिर्फ नियम से याद करते, हमारा नियम है सुबह शाम हम धूप दीप करते हैं बस खुश हो गए, हमारे बाप दादा करते थे हम भी करते हैं, मेरी सास करती थी, मैं भी रोज करती हूँ, नियम से करते हैं बस। ना सही ज्ञान है ना प्यार है। कई परमात्मा को याद करते हैं स्वार्थ से, मतलब से, हमें उनसे कुछ चाहिए इसलिए याद करते हैं। जानते हो ना, प्राप्ति करने के लिए भगवान को भी मनाते रहते हैं, भोग लगाऊंगी, यात्रा करूंगी, ये करूंगी, हाँ, मतलब से याद करते। शायद उनसे कुछ प्राप्त नहीं होता तो हम याद भी नहीं करते। कोई भय से भगवान को याद करते, मुझे कुछ हो न जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाए, मेरे पाप फूट न जाए, इसलिए भगवान को याद करते रहते। भय से भक्ति करते हम, प्यार से कहां याद करते, यथार्थ परिचय से कहां याद करते। यथार्थ ज्ञान और सच्चे प्यार से याद करना, एकाग्र हो जाते हैं। और लास्ट बात, राजयोग इतना सहज है, हमें इसमें आंख बंद करके बैठने की भी आवश्यकता नहीं। अक्सर परमात्मा को याद करने बैठते हैं लोग आंख बंद करके, सिर झुका करके बैठते हैं। हमने देखा स्कूलों में प्रार्थना कराते हैं बच्चों को, जबरदस्ती आंख बंद कराते। लोग कहते हैं मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वहां भी आंख बंद करके खड़े होते हैं। क्यों हम आंख बंद करते हैं? हमारी समझ गलत है, मान्यता गलत है। आंखें खुली रहेगी सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठ। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? भटकता है। हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, मन की आंख घूम रही है। कैसे एकाग्र हूं? हमें मन की आंख को फोकस करना है। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि बाह्य आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए। वैसे भी हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, हम आंख बंद करके कितना समय बैठ सके। आंखें नेचुरल खुली रखिए, मन परमात्मा के प्रति फोकस करना है। परमात्मा को याद करने में मन बुद्धि का रोल है, इसमें आँख की तो कोई बंद करने की खोलने की बात ही नहीं है। हमारी आँखें नेचुरल खुली रहती हैं या बंद रहती? खुली रहती है। आँख बंद करना अननेचुरल, इसलिए अभ्यास यही हम करें, आँखें नेचुरल खुली हों, मन परमात्मा के प्रति एकाग्र हो, फोकस। आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। हमेशा योग अभ्यास कराने सामने कोई नहीं भी बैठ सकता है, इसलिए आपने हमारे सेवा केंद्रों में भी देखा होगा, यहाँ भी आप देखते हैं, हमारे हर हॉल में, हर मेडिटेशन रूम में सामने सर्वश्रेष्ठ योगी ब्रह्मा बाबा का चित्र है, कि जैसे ब्रह्मा शिव को याद करते हैं, हमें भी परमात्मा शिव को याद करना है। खुद को आत्मा समझते हुए, आत्मा दृष्टि से देखते हुए हमें याद परमात्मा को करना है। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाइए। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके ना बैठे, साइड में रख दीजिए। एक दो से अलग अलग होकर बैठिए, टच करके ना बैठे। कमर सीधी करके बैठिए ताकि आप थके नहीं। आज मैं योग अभ्यास करा रही हूँ, मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। हम शरीर से यहाँ बैठेंगे, मन और बुद्धि से परम धाम में जाएंगे, मन की आँख से परम ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखेंगे और याद करेंगे। ये नया अभ्यास है आपके लिए, इसलिए मैं गाइड करूंगी, कमेंट्री से मैं जो विचार दूं वो मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन रिवाइज करना है। अर्थ समझें, रियलाइज करें। उस अनुभव में एकाग्र होना, उससे योग कहते हैं। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से डिटैच हो जाइए। साक्षी बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच भ्रिकुटी में अपने ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हूँ। मेरा असली घर शांति धाम है। मन बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में पहुंच जाइए। जहाँ पिता परमात्मा भी निवास करते हैं, मैं मन की आंख से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूँ। अब मुझे आपका सही परिचय प्राप्त हुआ है। आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। अब शांति के सागर शांति दाता है, मैं आत्मा आपकी संतान, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। मैं स्वयं शांत रहूंगी, सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन शिव बाबा आपकी याद से मैं आत्मा भी पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा आपकी अमर संतान हूँ। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, मैं स्वयं दिव्य ज्योति अविनाशी चैतन्य शक्ति है। ओम शांति।